शांति। आज हम सभी के बीच में बहुत ही अनुभवी और वेरी पावरफुल बाबा जो हमेशा कहते हैं गीता का भगवान एक परमात्मा शिव है, श्री कृष्ण नहीं, इस बात को सारी दुनिया में विशेष रूप से प्रसिद्ध करने वाले, बाबा के श्रीमत को फॉलो करने वाले, ऐसे हम सबकी बहुत मीठी प्यारी आदरणीय वीना बहन जी जो सिरसे से हैं, हम सभी का क्लास कराएंगे। इनकी क्लास का टॉपिक रहेगा साइलेंस की शक्ति का प्रयोग, और उसके साथ साथ इनके अपने बहुत सुंदर अनुभव वो भी हमारे साथ वो रखेंगे। तो वीना बहन जी को मैं नम्र निवेदन करती हूँ, आप साइलेंस की शक्ति का प्रयोग इसके बारे में सभी को अवगत कराएं। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा के प्यारे से पांडव भवन में बहुत सारी पुरानी यादों के साथ बैठे हैं। इस हॉल में अंदर आते ही यहां पर जहां स्टेज नहीं था, अव्यक्त बाप दादा का मिलन करते थे हम लोग। वो दृश्य मुझे याद आया, लास्ट इस हॉल में कब मैं बाबा से मिली थी, 1983 जनवरी 21 को बाबा अचानक आए थे। उस दिन यहां पर लास्ट बाबा का मिलन मैंने किया था। उसके बाद बाबा का आना ओम शांति भवन में रहा, उसके बाद तो बाबा शांतिवन में आए। लेकिन इस हॉल में इस दरवाजे से आते ही हमारे बचपन, इस आंगन में जो हमने बहुत कुछ सीखा है, छोटे से अनुभवी बनने तक की इस सफर में, इस पांडव भवन का, यहाँ के आंगन का, दादियों का, बाप दादा का बहुत बड़ा योगदान है। उस सब एकदम से याद आया, सच में दिल भर आता है हम कितने भाग्यशाली है, इतने पूर्वजों की पालना हमें मिली। जैसे आंगन में चलते फिरते हम उनसे मिल लेते थे, तो उन सभी यादों को ताजा करते हुए, वैसे तो साइलेंस पावर पर चिंतन करना है आज हमें, मैं सोच रही थी शांति आत्मा का स्वधर्म है, लेकिन हम शांति, तीन तरह की शांति महसूस करते हैं। एक शांति परमधाम वाली शांति, एक शांति परमधाम वाली शांति, बिल्कुल शांत, कोई थॉट्स नहीं, कोई विचार नहीं, बस कंप्लीट स्टिल बन गए, स्थिर बन गए हम। इसलिए बाबा कहते हैं पूर्ण प्रमाण में शांति की महसूसता करनी है तो परमधाम में ही हो सकता है। लेकिन वहां हम क्या महसूस करते हैं वो तो याद नहीं है, क्योंकि वहां शरीर नहीं है। तो दूसरी शांति कौन सी है? सतयुग त्रेता युग वाली शांति है ना, जहां सुख भी है, पवित्रता है, पवित्रता के आधार से सुख शांति है, अनुभव है, जीवन मुक्त स्थिति की शांति। तीसरी है संगम युग की शांति। एक है परमधाम वाली शांति, एक है सतयुग त्रेता युग वाली शांति, तीसरी है संगम युग वाली शांति। संगम युग वाली शांति क्यों खास हो जाती है? जिसने नमक नहीं खाया है उसको मिठाई की मतलब पता नहीं होता है। अगर मिठास ही मिठास खाया है उसने, कभी तीखा नहीं खाया, कभी नमक नहीं खाया, तो उसको उस मीठेपन की, मिठास की मतलब और उसकी जो महत्व है वो समझ में नहीं आता। लेकिन संगम युग में, इस शरीर में या पूर्व जन्म में हमने जो अशांति महसूस की है, अपवित्रता महसूस की है, दुख महसूस किया है, उसके कंपैरिजन में जब हम आत्मा इस शरीर में रहते हुए उस गहरी शांति की, उस परमात्मा पवित्रता के अनुभव करते हैं ना, बाबा भले कहते हैं परमधाम की शांति सच्ची शांति है, लेकिन मन अनुभव ये कहता है संगम युग की शांति अनोखी है कि नहीं है, बताइए, क्योंकि ये अनुभवात्मक है, कंपैरेटिवली तुलनात्मक तरीके से लंबे समय से अशांति की महसूसता की थी हमने, लंबे समय से शांति की चाहना थी हमें, भटक रहे थे कहाँ मिलेगी कहाँ मिलेगी कहाँ मिलेगी, कहीं नहीं मिली। अंदर देखा बाहर देखा, कहीं से महसूस नहीं हुई। लेकिन आखिर में जहां से आस नहीं थी वहां से मिल गई, जहां से सोचा भी नहीं था कि यहां शांति मिल सकती है। हर एक का अपना अपना अनुभव है। एकदम से बाबा को देखा परम शांति की अनुभूति हो गई। कोई ऐसे ही गुरुवार के दिन आ गए, टोली ले रहे थे, शांति की अनुभव हो गई। एक माता कह रही थी, घर के सामने खड़ी थी, दीदियां वहां चल के जा रही थी, उस दीदियों को देखते देखते उसको शांति की महसूसता हो गई, बाबा ने करा दिया। वो अनुभव सुनना चाहिए, बहुत सुंदर अनुभव सुनाते हैं। तो ये तीनों तरह की शांति, इसमें से सतयुग त्रेता युग वाली शांति तो होगी, बहुत सुंदर शांति जो अभी भी हम देवताओं के चेहरों में देखते हैं। देखिए दुर्गा भले सतयुग की देवी नहीं है, संगमयुग की पूजा है, किसी को मार रही है ना, वो स्वरूप याद कीजिए, किसी को मार रही है, फिर भी उसके चेहरे पर एक गहरी शांति है। वो कहाँ की शांति है, सतयुग वाली शांति है या संगमयुग वाली शांति है? संगमयुग वाली शांति, जिसमें डिविनिटी भी है, मतलब दिव्यता है, एक अलौकिकता है, एक प्राप्ति है, एक अनोखापन है, पवित्रता को पाने की एक क्या कहेंगे, हॉनरिंग हर सेल्फ, एक बहुत सुंदर से महसूसता है। वो आप सारे देवियों के चेहरे पर देख सकते हो। भले देवियों का चेहरा बनाया द्वापर युग के बाद के आर्टिस्ट ने, लेकिन देखिए क्रूरता नहीं है। काली हो, अंबा हो, दुर्गा हो, उनके चेहरे में जो शांति है। इसलिए आज जो हम साइलेंस पावर, शांति एक जगह स्वधर्म है, शांति एक गुण है, एक स्वधर्म है, शांति एक गुण है, शांति एक मूल्य है, शांति एक स्वभाव है, शांति एक संस्कार है। लेकिन इस सबके बावजूद शांति एक शक्ति है। आप शांति के अलग 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 चेहरे देखते जाइए, बहुत गहराई है शांति की। शांति में पवित्रता समाई है, शांति में आनंद समाया हुआ है, शांति में ज्ञान समाया हुआ है। बिना ज्ञान के शांति की महसूसता हो नहीं सकती। और ये शांति की महसूसता जो संगम युग में हम कर रहे हैं, भले हमें वरदान में मिला है, ये हमारा स्वधर्म है, लेकिन जितना तपस्या के आधार से हम शांति को महसूस करते हैं ना, उतना वो शांति अपना होता जाता है, अपनी अनुभव करते हैं आप। ये अंडरलाइन द पॉइंट क्या है, शांति वरदान में मिला है, बाबा ने वरदान के रूप में शांति दे दिया, शांति हमारा स्वधर्म है, बाहर से लेना नहीं है, अंदर ही है शांति। फिर भी अगर तपस्या से हमने शांति के निखार को नहीं बढ़ाया, अगर तपस्या से हमने शांति की शक्ति को अनुभव नहीं किया, तो जो शांति कुंड की बातें बाबा करता है, बच्चे आप एक शांति कुंड हो, चारों ओर अशांति है, और उन लोगों को आप शांति कुंड बन के शांति की महसूसता कराओ, ये बाबा के महावाक्य है। आप सभी को पता है शांति के ऊपर बाबा ने बहुत सारी मुरलियां चलाई है, और बाबा ने खासकर शांति की शक्ति को नैनों से और संकल्पों से दिखाने को कहा है। खासकर आपके नैनों से शांति की शक्ति महसूस हो, आपकी संकल्पों से शांति की शक्ति की बाबा ने कहा है। जैसे आज भी आपने देखा बारिश हुई थोड़ी सी,
बारिश के बाद जो हवा चली, शायद ऊपर वो डिफरेंस आप महसूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इतनी गर्मी नहीं है, शांतिवन में वो हम महसूस कर सकते, एकदम से लू जैसे आ रही थी ना, गर्म हवा, बारिश के बाद वो हवा में थोड़ी सी क्या आने लगी, ठंडक। इसी तरह हम शांति स्वधर्म के रूप में भी महसूस करते हैं, वरदान के रूप में भी महसूस करते हैं, लेकिन अभी आप लोग तपस्या कर रहे हो, तपस्या करने वो भी कहां पहुंचे हो, जहां एक साधारण व्यक्ति ब्रह्मा बाबा बन गए तपस्या करके, जिसको लोग व्यापारी कहते थे, जिसको लोग गृहस्थी कहते थे, ऐसे महान आत्मा नारायण बनने के योग्य बन गया यहां तपस्या कर करके। एक 18 साल की लड़की जगदम्बा बन गई यहां तपस्या करके। ये वो धरनी है जहां पर तपस्या करके लोग क्या से क्या बन गए। इस धरती पर आप तपस्या कर रहे हो। पहले हम लोग जब अकाउंटिंग के लिए यहां आते थे, बाबा का आना जब बंद हो गया, नीचे बाबा का आना शुरू हो गया, उसके बाद हम मधुबन आते थे, पांडव भवन आते थे अकाउंट्स के लिए। वो हमारे लिए लॉटरी था। हम सोचते थे लॉटरी मिल गई हमें, अकाउंट एक बहाना है बस, पांडव भवन में एक हफ्ते रहने का चांस मिल गया, कहां भी कोने में जगह मिल जाए हम खुश थे। पांडव भवन में हम रहते थे, सच में इस धरती के कण कण में आप ब्रह्मा बाबा की कदमों की आहट अनुभव कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो। आज शाम को भी मैं बैठी थी शांति स्तंभ के पास, कुछ सोचा नहीं था, मुझे कहीं जाना था, 15 मिनट टाइम था, मैं बैठ गई थी वहां, एकदम से आई फेल्ट कि बाजू में से बाबा चल के जा रहे हैं। सच में ये आप यहां महसूस कर सकते हो, यहां की कण कण में बाबा अभी भी जीता है। इसलिए अभी हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम ऐसे तपस्या करें जो शांति वरदान में मिला है, जो शांति हमारे स्वधर्म है, जो शांति हमारी शक्ति है, वो हमारे लिए एक शस्त्र बन जाए। क्या अनुभव करके जाना है शांति हमारे लिए? कई बार हम सोचते हैं शांत रहना एक कमजोरी है, लोग सोचते हैं शांत रहना कमजोरी है, इसलिए हमें भी दहाड़ना चाहिए, चिल्लाना चाहिए। नहीं, आप शांति को एक शस्त्र बना के देखो, बिना कुछ कहे सामने वाले के अभिमान का सिर आप काट सकते हो, कुछ कहे बिना। कितनी उलझी हुई समस्याएं हल हो जाती है, बट शांति को, गहरी शांति को महसूस करके उसको एक शस्त्र बनाना, वो कैसे होगा? कोई भी वस्तु जितना सूक्ष्म होती जाती है ना, उतना ताकतवर होती जाती है। उसके लिए हम आटम का उदाहरण देते हैं। लोग मानते थे हाइड्रोजन बॉम्ब भी स्ट्रांग है, लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब से स्ट्रांग निकला एटॉमिक बॉम्ब, क्योंकि हाइड्रोजन से कितना गुना सूक्ष्म हो गया। इसी तरह यहां जब हम बैठते हैं तपस्या करते हैं, यहां बैठे हुए कोई भाई बहने यहां अव्यक्त बाबा से मिले हैं क्या? इस हॉल में 1, 2, 3 हाथें उठ रही है, 4। अरे आप महसूस कीजिए, आप अभी इमर्ज कीजिए। ये स्टेज नहीं था, यहां पर एक गद्दी लगती थी, बाबा की बड़ी सी गद्दी लगती थी, और यहां बाबा आते थे और हम लोग यहां बैठते थे। पैक्ड हॉल रहता था, कोई कुर्सियां नहीं लगती थी, सभी नीचे बैठते थे। आप महसूस कीजिए कल अमृत वेले या कल जब दिन में भट्टी में आप बैठेंगे, महसूस कीजिए यहाँ बाबा बैठा है। साकार बाबा के समय ये बन रहा था, ये बना नहीं था, लेकिन अव्यक्त बाबा यहाँ पर ही ज्यादातर आए। कभी कभी हिस्ट्री हॉल में आए, मैंने बाबा से एक बार हिस्ट्री हॉल में मेरा मिलन की मनाया है, एक बार बाबा के कमरे में मिलन मनाया है, लेकिन ज्यादा समय 83 तक यहाँ पर मिलन मनाए। 83 के बाद में ओम शांति भवन में बाबा से मिले। मैं क्यों कहती हूँ कि शांति की शक्ति को महसूस करने के लिए अव्यक्त मिलन से बड़ा कोई मौका नहीं हो सकता। अभी भी आप याद कीजिए, नीचे बाबा आते हैं, बाबा का टर्न होता है, स्क्रीन पे बाबा अव्यक्त बाबा को चलाते हैं, 25,000 लोग बैठे रहते हैं, आवाज करते रहते हैं तब तक। जैसे अव्यक्त बाप दादा की मुरली स्टार्ट हो गई, एक ठंडी सी शांति की लहर फैल जाती है। बोलने वाले सभी की जुबान पे टिक्सो टेप लग जाता है कि नहीं है? ये महसूस किया आप लोगों ने? आवाज दब जाती है, क्या एक पावर महसूस होता है, मानो की शांति की आंधी निकल आई, शांति का तूफान अनुभव करते हैं हम। तभी तो घंटों भर शांति से बैठते हैं लोग। तो शांति की इस गहन अनुभूति करने के लिए मैं आपको बाबा की चार बातें याद दिलाऊंगी जो बहुत जरूरी है। अगर हमें गहरी शांति की अनुभूति करनी है, क्योंकि शांति में सब कुछ, ऐसे नहीं सोचना शांति माना सन्नाटा, ऐसे नहीं सोचना शमशानी शांति नहीं है। मैंने तीन तरह की शांति बताई, तीनों शांति में बहुत आनंद है। संगम युग की शांति हो, परमधाम वाली शांति हो, या सत्ययुग त्रेता युग वाली शांति हो, जहां की भी शांति महसूस करनी है। तो पहले पॉइंट, अगर शांति की गहन अनुभूति करना चाहते हो तो कभी भी किसी की प्रभाव में नहीं आओ, कभी भी किसी की प्रभाव में नहीं आओ। कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, बाबा से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। सबसे बड़ा कौन है? बाबा है। छत्रछाया किसकी है हमारी? तो प्रभाव किसका होना चाहिए? उसके बढ़कर कोई प्रभाव हमारे ऊपर ना हो, यह अंडरलाइन होना चाहिए। दूसरा, क्योंकि आजकल हम दुनिया में, गलत मत समझना, डिजिटल जमाना है, मोबाइल के प्रभाव में हम ज्यादा आते हैं। ऐसा नहीं कि हम दुनिया में चीजें देखते हैं, हम देखते बाबा की चीजें ही है, उनका क्लास, इनका क्लास, पता नहीं हजारों क्लास आते हैं आजकल यूट्यूब में। मैंने कभी नहीं सुना है, लेकिन सुना है भाई बहनों से, वो सुन के ना हजारों प्रश्न लेके आते हैं हमारे पास। दीदी उस भाई ने क्लास में ये कहा, दीदी इस भाई ने क्लास में ये कहा। मैंने कहा, बाद में मैं कहती हूं कि बाबा ने क्या कहा है? सबसे बड़ा कौन है? मैं या कोई दूसरा भाई? सबसे बड़ा कौन है और सबसे ज्यादा प्रभावशाली किसकी वाणी है? पक्का? किसी से भी ज्यादा पक्का प्रभावशाली होना चाहिए बाबा की मुरली। दूसरी बात, अगर गहरी शांति की महसूसता करनी है हमें, उसे जीवन में एप्लीकेशन में लाना है, तो हमें अभाव का भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अभाव समझते हो? लाइट नहीं है, फैन नहीं है, गाना अच्छा नहीं बजा, बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति ठीक नहीं है, मेरा रोज का सीट नहीं मिला है। सेंट्रो में ये छोटी छोटी बातों में स्थिति डिस्टर्ब हो जाती है भाई बहनों की। हमारे सेंटर में एक भाई का सीट फिक्स था, सभी जानते थे वो, हाँ रोज बैठता है, कोई नहीं बैठते थे। एक दिन बाहर के सेंटर से कोई भाई आया, वो आके बैठ गया। जब ये भाई आया तो देखा मेरे सीट पर कोई दूसरा बैठा है। फिर बाजू वाले भाई ने कहा दूसरी सीट पर बैठ जाओ। पूरी मुरली वो सीट ही देखता रहा। मैंने बाद में उसको कहा भैया आपका योग सीट का योग था, आज कुर्सी का योग था या सच्चा राजयोग था, बताओ। देखिए छोटी सी अभाव, उसको सीट मिली, कुर्सी मिली, अपनी नहीं मिली। तो होना चाहिए अभाव का प्रभाव। बाबा के घर में कोई चीज का अभाव नहीं है, सब चीजें उपलब्ध है। फिर भी थोड़ा हेर पेर हो जाता है तो भी हम हिल जाते हैं, तो हम क्या शांति की अनुभूति करेंगे। इसलिए अंडरलाइन क्या करना है, कोई चीज का अभाव हमें प्रभावित ना करे, तब हम गहरी शांति की अनुभूति कर सकते हैं। तीसरा, दबाव, प्रेशर, नेगेटिविटी का दबाव ज्यादा है हमारे ऊपर, नेगेटिविटी से ज्यादा वेस्ट का दबाव ज्यादा है हमारे पर, है कि नहीं है। इधर की उधर की बातें, बाबा कहते हैं बच्चे बैठते हैं सेवा समाचार सुनाने और सुनाने लगते हैं सेवाधारी का समाचार। ऐसे होता है कि नहीं होता है, मुझे बताइए। दो बैठते हैं कि हम सेवा समाचार सुनाएंगे, लेकिन सुनाने लगते से वहां पर गया था, वहां की दीदी ऐसी थी, वहां की भाई ऐसा था, शुरू हो जाते, ये सेवा समाचार है। ये जो वेस्ट, मैं क्या कह रही हूं, वेस्ट का प्रेशर हमारे ऊपर ज्यादा है। और जहां वेस्ट है ना, वो बेस्ट बनने नहीं देगा, ना शांति की अनुभूति करने देगा। जो शांति हमने पाई है वो रहने भी नहीं देगा, जो अंदर की शांति वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा वेस्ट से। वेस्ट में सारा आ गया, पर चिंतन आ गया, पर निंदन आ गया, व्यर्थ बातें आ गई, इधर की उधर की बातें सारी आ गई, चिंताएं आ गई, चिंता करना। और चौथी बात, तीन हो गया, एक प्रभाव, अभाव, दबाव, चौथा है स्वभाव। क्या करे दीदी, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। लास्ट में क्या एक्सक्यूज देते हैं हम, मैं ये करना नहीं चाहती हूं, थोड़ा ऊंची आवाज में बोल दिया। बोलते दीदी ऐसे बोलना नहीं चाहता हूं, क्या करे मेरा स्वभाव ही ऐसा है, आप थोड़ा समझ लो मेरा स्वभाव है ये। मतलब सामने वाला समझे, हम नहीं बदलेंगे, हम अपना दैवी स्वभाव नहीं बनाएंगे। अगर ऊंचा बोलना आपका स्वभाव है तो बदल लो ना भाई, बदल लो। मैं आपको छोटा सा, मैंने कहा था अनुभव सुनाऊंगी, इसी आंगन का अनुभव है। हिस्ट्री हॉल में हम कुछ 6-8 भाई बहने बैठे थे, बड़ी दादी थी, बड़ी दादी जानते हो किसको कहते हैं, दादी प्रकाशमणि, उनके साथ मीटिंग था। हमारी दादी हृदय पुष्पा भी थी, दादी कर्नाटक की दादी थी, और मोहिनी बहन जी थी, तीनों बैठे थे। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की बातें हो रही थी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की बातें हो रही थी, तो मोहिनी बहन ने कुछ कहा, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं छोटी थी, मैं नीचे बैठी थी, दादी हृदय पुष्पा दादी और मोहिनी बहन सोफे पर बैठे थे हिस्ट्री हॉल में, मैं और हमारे साथ 8-10 और भाई बहने सब हम नीचे बैठे थे, कुछ बातें हो रही थी। तो मोहिनी बहन जी की बातें मुझे अच्छी नहीं की, मैंने ऐसे हाथ दिखा कि मोहिनी बहन जी ये गलत है, मैंने ये बोला, आवाज से नहीं बोला, ऊंची आवाज नहीं था, लेकिन मैंने ऐसे हाथ दिखा। देखो हमारे बड़े हमें कैसे मूर्त बनाए, मैंने ऐसे हाथ दिखाया था, बड़ी दादी ने मेरे हाथ को ऐसे किया, ऐसे चुप, बड़ों का हाथ दिखाती है मुट्ठी। दादी ने इतना ही कहा, लेकिन 8-10 लोगों के सामने कहा, आपको पता है ना, लोगों के सामने कहते तो हमें बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत बुरा लगा। रोज में क्या करती थी जब मधुबन में होती थी, मुरली क्लास में जाते जाते बड़े दादी को गुड मॉर्निंग बोल के जाती थी, लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने बड़ी दादी को गुड मॉर्निंग नहीं बोला। देखो स्वभाव का मैं कहानी सुना रही हूं। फिर मुरली में, यहीं पर मुरली चलती थी, यहीं पर दादी यहां मुरली सुनाती तो मैं सामने बैठती थी जब मैं यहां होती थी। उस दिन मैं कहां कोने में बैठी, मैं नाराज थी, पता नहीं किस से नाराज थी। फिर नाश्ता हो गया, नाश्ते के बाद मैं यहां थोड़ी दिन के लिए थी, ओम शांति भवन में मेरा समझाने की ड्यूटी थी। मैं आंगन से जा रही थी, बहुत किनारे किनारे चल के जा रही थी क्योंकि आंगन में दादी बैठी थी, किनारे जा रही थी मैं, लेकिन ऐसे आंख में दादी ने देख लिया मुझे, दादी ने बुलाया मुझे, क्यों सवेरे से चुप के चल रही हो? मैंने कहा मैं चुप खड़ी रही। फिर भी दादी ने पूछा, गुड मॉर्निंग बोलने भी नहीं आई, क्लास में भी कोने में बैठी रही, अब भी किनारे जा रही हो, क्या बात है? मैंने कहा दादी आपने कल मुझे डांटा था ना, गलती मेरी नहीं थी, फिर भी आपने डांटा था मुझे। दादी ने कहा तेरी बात गलत नहीं था लेकिन तेरा तरीका गलत था, बड़ों को हाथ दिखा के बोलते नहीं है, बड़ों को हाथ दिखा के तुम बात कर रही थी वो गलत था, इसलिए दादी ने तेरे को डांटा। दादी ने बहुत अच्छी बात बोली, अपने डांटते हैं दूसरे हंसते हैं। क्या बोला दादी ने? अपने डांटते हैं दूसरे हंसते हैं, अब चुन तू इसमें से तुझे क्या चाहिए। तो उसके बाद दादी ने पास पास में बिठाया मुझे, घंटों भर दादी पत्र लिख रही थी, बिठाया। उसके बाद दादी ने उस दिन साथ में भोजन खिलाया मुझे, इतनी अच्छी तरह से मेरा स्वभाव भी परिवर्तन किया, मुझे शिक्षाएं भी दी, उतना प्यार भी दिया। इससे मुझे समझ में आया स्वभाव से हम मजबूर नहीं हो जाए, किसी से मजबूर नहीं होना है हमें, अपने स्वभाव से मजबूर नहीं होना चाहिए। क्या करें मेरा स्वभाव है तो बदलो ना, अगर स्वभाव है पुराना है, वो स्वभाव संगम युग का नहीं है, वो स्वभाव पुराने जन्म का है, तो पुराने जन्म के स्वभाव को बदल लो ना। अभी संगम युग में आए हो तो संगम युगी शांति का अनुभव करने के लिए, संगम युगी प्यार का अनुभव करने के लिए, संगम युगी पालना का अनुभव करने के लिए हमें भी एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। सामने वाले हमें पालना दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, लेकिन हम कदम आगे बढ़ाने में पीछे रह जाते हैं तो हम भी सभी से वंचित रह जाते हैं, तो शांति की अनुभूति कहाँ होगी बताइए? हो सकती है क्या? हम अपने स्वभाव में अकड़े हुए हैं तो हम कैसे अनुभव कर सकते हैं गहन शांति का? हमें योग में भी लगता है हाँ मैं ही ठीक थी, दादी गलत थी, ऐसे ही लगता है तो शांति की क्या अनुभूति करोगे? जब हमें महसूस होगा कि मैं गलत थी, महसूस होने के बाद भी मेरे में अगर बदलाव नहीं आया तो भी मैं शांति की अनुभूति नहीं कर सकती। जहां शांति की अनुभूति नहीं है वहां प्यार क्या अनुभव करेंगे हम? जहां शांति की अनुभूति नहीं है वहां हम बड़ों की पालना का क्या अनुभव करेंगे? गलत मत समझना, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। यहां कुछ टीचर्स हैं, ज्यादा भाई बहने बैठे हैं, भाई बहनों से प्रश्न है मेरा। आप लोग रोज सेंटर में जाते हो, कोई ना कोई सेंटर में जाते जरूर हो। दीदियां आप आए ना आए समय पर तैयार होके मुरली सुनाती है आपको। आप तो कई बार अपने कारण बहाने से कारण से मिस भी कर लेते हो, लेकिन दीदियों को तो समय पर मुरली सुनाना होता है। और आप नहीं आए तो गुरुवार की टोली रख के भी आपको खिलाती है, आप नहीं आए थे खा लो, बहुत पालना करती है। छोटी छोटी बहनें अपने से डबल उम्र वालों भाई बहनों की पालना करती है। संगम युग की विचित्र बातें हैं ना। फिर भी एक दिन समझिए, साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन में रोज दीदियां आपकी पालना करती है, मुरली सुनाती है, मीठी बातें करती है, आपकी गृहस्थी की समस्याएं पूछती है, अपने तरीके से समाधान बताती है, टोलियां खिलाती है, ब्रह्माभोजन खिलाती है, सब कुछ करती है। वन फाइन डे कुछ कारणवश आप क्लास में आए, कुर्सी खींच के बैठे, डर कुर्सी खींचा तो दीदी को बुरा लगा, दीदी ने आपको डांट दिया, ठीक है। अभी 365 दिनों में से एक दिन दीदी ने डांटा तो आप क्या याद रखोगे? सच बताना, एक दिन डांट पड़ी है आपको, पूरे और सारे दिन दीदी ने आपसे मिठास से बात की है, टोली खिलाई है, मुरली सुनाई है, सब अच्छी की है, एक दिन डांट मिली है तो आप क्या याद रखते हो? नहीं, ये झूठ बोले कौवा काटे। कोई नहीं बोलता कि दीदी ने अच्छाई के लिए कहा, नहीं, हमको वही बात याद रहता है। सच्चा है कि नहीं है बताइए? क्योंकि नेगेटिव को पकड़ के रखना हमारी आदत हो गई है, समझ में आया? हम भूल जाते दीदी भी इंसान है, हम भूल जाते इनका भी अपना कुछ परेशानियां हो सकती है। मैं दीदियों का पक्ष नहीं ले रही हूं, एक एग्जाम्पल दे रही हूं बस। इसलिए शांति की शक्ति की अनुभूति के लिए स्वभाव को बदलने का, नेगेटिविटी को पकड़ के रखने का, एक तो स्वभाव बदलना है हमारा, दैवी स्वभाव बनाना है, संगमयुगी स्वभाव बनाना है, ईश्वरीय स्वभाव बनाना है, भगवान के स्वभाव को अपना स्वभाव बनाना है, साथ में नेगेटिविटी को, वेस्ट को पकड़ के रखने की आदत जो है उसे भी बदलना है, तभी हम शांति की शक्ति की अनुभूति कर सकते। आज भी देखिए, हम योग में बहुत अच्छा अनुभव करते, करते कि नहीं करते? बहुत गहराई से 15-20 मिनट तक गहन शांति की अनुभूति करते हैं, बाद में बाहर जाते आपके जूते किसी ने पकड़ पहन लिया तो शांति खत्म। ऐसे क्यों होता है? इसका कारण है शांति अनुभव तो हम कर रहे हैं बैठे बैठे, लेकिन अप्लाइड साइंस नहीं बना है। शांति को, साइलेंस पावर को हम जीवन में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। बैठे बैठे हमें शांति की अनुभूति बहुत अच्छी लगती है, करते भी है, हम ऐसे नहीं कि नहीं करते। इसमें सेंटर में रहने वाले, घर में रहने वाले की कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी कर सकता है, करते भी है। कई बार सेंटर में रहने वालों से अच्छी महसूसता घर वाले कर लेते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल में हम क्यों मिस हो जाते हैं? उसका कारण बीच में गैप आ जाता है। आप सोचिए, आपके पास एक झोला है, झोला, आज आपको जो भी टोली मिली आपने सोचा खाने के साथ खाएंगे, बार बार खाने की आदत ठीक नहीं है, आज आपको 4-5 बार टोली मिली, सारा उसी में आपने डाल लिया झोले में, सोचे कि शाम को भोजन करते समय साथ में खा लेंगे, लेकिन रात शाम को भोजन करते समय बैग खोल के देखते हैं उसमें एक ही टोली है और 3 टोली नहीं है। कहां चली गई वो टोली? बाद में आपने खोल के देखा, आप टोली डाल डाल के रखते थे ना बैग को, तो चूहे ने छेद कर लिया था, आपने देखा नहीं था, जिसके कारण ऊपर से जो टोली आपने डाला वो छेद में से। लेकिन आपका मन तब तक क्या सोचा? पता नहीं किसने खा लिया मेरा टोली, पता नहीं किसने निकाल लिया। जब तक छेद आपने देखा नहीं तब तक आपको ये महसूस नहीं हुआ कि ये मेरे कारण ही मेरी टोली मिस हुई है। इसी तरह शांति की जब प्रैक्टिकल में अनुभूति नहीं कर पाते हैं, हम सोचते इनके कारण मेरी शांति भंग हुई, हम सोचते इनके कारण मेरी शांति भंग हुई, हम सोचते व्यवस्था के कारण शांति भंग हुई, लेकिन शांति भंग होने के कारण दूसरा कोई नहीं है। बाबा कहते हैं विघ्न माना क्या है, माया माना क्या है? बाबा की डेफिनेशन बताइए, व्हाट इज माया? अपने ही संकल्पों की कमजोरी को माया कहते हैं, ये बाबा की डेफिनेशन है। माया और कुछ बाहर की चीज नहीं है, अपने ही संकल्पों की कमजोरी। कभी तो हमने सोचा होगा कमजोर संकल्प किया होगा, वो क्यों मैं खड़ा है, एक दिन वो फलीभूत हो जाता है। इसलिए कभी भी कमजोर संकल्प मत कीजिए, कभी भी कमजोर संकल्प मत कीजिए। अगर आता है तो वही दबा दीजिए उसको, कमजोर संकल्प को आगे बढ़ने नहीं दीजिए, व्यर्थ संकल्प को आगे बढ़ने नहीं दीजिए, नेगेटिव संकल्प को आगे बढ़ने नहीं दीजिए। लेकिन हम करते क्या है, नेगेटिव को, कमजोर संकल्प को ही क्या करते हैं? आप मुझे बताइए, मंथन करते हैं ना, दही का मंथन करते हैं तो उसमें से माखन निकलता है। पानी में मंथन किए तो क्या होता है, क्या होता है बताइए, माखन निकलते हैं? ठीक है, अगर दलदल वाली, कचड़े वाली, गंदी पानी में माखन किए, मंथन किए तो क्या निकलता है? कचरा ही सारा कपड़ा खराब कर देता है। इसी तरह शांति की अनुभूति क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अभी कोई कमेंट्री दे रहा है, बहुत अच्छा अनुभव करा रहा है, आप भी गहरी शांति की अनुभूति कर रहे हो, खो जाते हो, बहुत अच्छा लगता है, वायुमंडल भी पावरफुल हो जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल लाइफ में ला नहीं सकते। जब शांति की जरूरत होती है तब हम चिड़चिड़ा हो जाते हैं। इसका कारण है, कहीं तो हम जो शांति की स्टॉक जमा कर रहे थे ना, जैसे आपके झोले में टोली डाल रहे थे, जैसे शांति की स्टॉक जमा कर रहे थे, उसमें छेद हो गया है। कौन सा छेद? वेस्ट थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ये सारे छेद है। सच बताइए, एक हफ्ते वाली मुरली की कोई पॉइंट सुना सकते हैं आप? ऐसे एक बार मैंने पूछा था तो एक भाई ने कहा, दीदी बाबा ने कहा है अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। ये तो बाबा रोज कहता है। नहीं, कोई पर्टिकुलर पॉइंट, कोई आज बुधवार है तो पिछले बुधवार की कोई पॉइंट नहीं याद रहती। लेकिन हम क्या करते पता है, 10 साल पहले आपने मुझे इंसल्ट किया था, वो मरते दम तक मैं नहीं भूलूंगा, ये याद रखते कि नहीं रखते? सच बताइए, हम बीकेस है, नॉन बीकेस की बात तो छोड़ दीजिए, बाहर वालों की, दुनिया वालों की बात छोड़ दीजिए, हम अपनी बातें करते हैं। हम बीकेस भी अच्छाई को पकड़ते हैं या नेगेटिव को पकड़ के बैठे हैं? बोलने वाले ने कब का भुला दिया, लेकिन जिसने सुना वो पकड़ के बैठा है कि नहीं है? तो शांति की शक्ति की अनुभूति करने के लिए क्या करना चाहिए, अपने स्वभाव को बदलना चाहिए। कौन बदलेगा हमारे स्वभाव को? हमारे अपने स्वभाव को किसको बदलना होगा? तो कौन कौन है ये चारों पॉइंट में से कौन सा शुरू करेंगे? आज से ही शुरुआत कौन से करेंगे? प्रभाव, अभाव, दबाव और स्वभाव। इसमें ज्यादा पावरफुल है स्वभाव। तो बदलाव किस में शुरू करना चाहिए? तो कब से शुरू करेंगे? आज से, अभी से। लेकिन हम कैसे शुरू करते हैं, मैं एक घटना सुनाती हूँ। ऐसे एक भट्टी की क्लास करा रही थी, हमारे यहाँ जोनल भट्टियां होती है, एक हफ्ते की भट्टी होती है, भाइयों के अलग और बहनों के अलग, माताओं के अलग। भाइयों की भट्टी चल रही थी, करीब 800 भाई थे भट्टी में। मैं एक हफ्ते की भट्टी 2 दिन से देख रही थी। अमृत वेले बहुत लोग झुटका खा रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा अलर्ट करूं, इसलिए मैंने एक क्लास करवाया अमृत वेले का महत्व। बाबा के मुरली है ना, अमृत वेले के ऊपर कितनी स्ट्रांग मुरली है, अमृत वेले का महत्व कितना बाबा ने समझाया है, वो सारी पॉइंट्स कलेक्ट करके मैंने एक क्लास करवाया, 1 घंटे का। क्लास पूरा हुआ, एक भाई उठ के आया और उठ के आके बोला, दीदी मैं कितना भी करूं ना, 6:30 बजे के पहले मेरा आंख खुलता ही नहीं है। मैंने कहा, भैया रात को जल्दी भोजन किया करो, 7 बजे के पहले तो अमृत वेला उठना आसान हो जाएगा। नहीं दीदी, करके देखा होता नहीं है। मैंने कहा, रात के भोजन में खट्टी चीजें खाना छोड़ दो, तो अमृत वेला फ्रेश रहेगा। बोला दीदी होता नहीं है, मैंने बहुत बार देखा मेरे से होता ही नहीं है। मैंने कहा जब ठान लिया है होता ही नहीं है तो कौन करेगा फिर। लेकिन उसने कहा नहीं दीदी मैंने एक प्लान बनाया है। मैंने कहा अगर पहले बता देते तो क्लास में सुना देते प्लान। तो नहीं दीदी आपको सुनाता हूं। तो ठीक है सुनाओ क्या प्लान बनाया। उसने क्या प्लान बनाया, उसने एक ग्लोब खरीदा है, ग्लोब जानते हो विश्व का, और जहां वो योग के लिए बैठता है वहां रखा है वो ग्लोब। और वो 6:30 बजे से पहले उठ नहीं पाता, कई बार 7 भी बज जाता है। तो जब वो उठता है तो घड़ी देखता है और देखता है अभी 6:15 बजा है, 6:30 बजा है, अब कौन से देश में अमृत वेला होगा। और वो सोच के ग्लोब घुमा के उस देश में बैठ जाता है। बदलना चाहिए अपने स्वभाव को, लेकिन वो बदल दिया, सिस्टम को ही बदल दिया। मैंने कहा भैया किसी भी देश में अमृत वेले योग करने को किसने कहा है तेरे को। तो मेरे से क्या बोलता है पता है, अरे दीदी बाबा ने ऐसे कभी कहा है क्या भारत के अमृत वेले योग करो। भारत ने, बाबा ने तो भी ऐसे नहीं कहा है ना, बाबा ने कहा अमृत वेले योग करो। वंडर देखे, इसीलिए बाबा ने कहा दुनिया में सबसे ज्यादा बहानाबाजी कोई जानता है तो वो ब्राह्मण है। बाबा के बच्चे ही सबसे ज्यादा बहानाबाजी जानते हैं। खुश हो के ताली बजा रही हो, किसके लिए बजा रहे हो। इसलिए बहुत भाग्यशाली हो जो पांडव भवन में भट्टी करने को मिल रहा है। इसलिए इजी नहीं लेने ना, टेकनेस ग्रांटेड नहीं लेना, सब जगह भट्टी है नहीं। यहाँ की धरती की विशेषता है, यहाँ की मिट्टी के लिए वरदान है। सोचिए पूरे माउंट आबू में कोई दूसरा जगह नहीं मिला था भगवान को, यही खरीदना था, यही पांडव भवन बनाना था। यहां पर आप सोचिए ब्रह्मा बाबा जिसके तन में परमात्मा विराजमान थे, विराजमान रहते थे, उन्होंने यहां पर कदम कदम चल के घूम फिर के बच्चों को भेजने के लिए पीछे के पेड़ तक जाते थे, बाबा रिसीव करते थे। वो सारा आप एक बार इमर्ज कीजिए, यहां की मिट्टी में क्या महसूसता है वो अनुभव कीजिए। बड़ी दादियों की तपस्या, जब ये ओम शांति वन बन रहा था, ओम शांति भवन, तो कितने भाई बहनों ने पत्थर उठाया है, कितनी कर सेवाएं की है यहां पर, ऐसे ही नहीं बना है। ये जो यहां बाजू में आप अंगूर का देख रहे हो, एक खंडर जैसे था ये नीचे का, उसको भर के यहां पर बाबा ने एक बगीचा बनाया। सोचिए ये सब याद करते हुए यहां की धरती से ताकत लीजिए कि हमारा स्वभाव ब्रह्मा बाबा जैसा नहीं, थोड़ा तो बने उन जैसा, बन सकते हैं। एक सामान्य मनुष्य नारायण बन सकता है तो हम क्यों नहीं नारायण बन सकते, बन सकते कि नहीं बन सकते, किस किस को लगता है बन सकते हैं। हाँ जरूर बन सकते हैं, क्योंकि लक्ष्य बाबा ने दिया है, हमारा अपना लक्ष्य नहीं है ये। तो इसके लिए चाहिए आप गहरी शांति की अनुभूति अमृत वेले भी करते हो, शायद भट्टी के क्लासेस के बाद भी आपको कराया जाता है, उसके साथ उस शांति को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते समय। समझो पहले ऐसे सिचुएशन परिस्थिति आने पर आपको गुस्सा आता था, अब ना आए, ऐसे परिस्थिति को आप मुस्कुराते हुए पार कर सके, ऐसी अपनी स्थिति बनाकर जाने का सोचो। हो सकता है तो हम 4 बातें याद कर रहे थे शांति की शक्ति की एप्लीकेशन के लिए, उसमें से स्वभाव के ऊपर आज से अभी से काम करेंगे, करेंगे बहाना देना बंद करेंगे, किसी की गलत बातें पकड़ के रखना बंद करेंगे, नेगेटिविटी को पकड़ के रखना बंद करेंगे, सदैव पॉजिटिव एंगल से सोचने का अभ्यास डालेंगे खुद के बारे में और सबके बारे में भी। तब देखिए शांति की शक्ति क्या कमाल करती है, शांति की शक्ति का स्टॉक हमारे अंदर जमा करने के लिए जितना हो सके हम उसको इम्प्लीमेंट करें, धारण करें, ये बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, और लास्ट में मैं बड़ी दादी का एक बहुत सुंदर अनुभव, शायद अगर आपने सुना भी होगा मेरे क्लासेस के द्वारा, दोबारा सुनाकर क्लोज करना चाहूंगी कि मैं आई थी 15 साल की उम्र में यज्ञ में, क्योंकि ज्ञान मुझे 8वीं क्लास में मिला था। और सुनाऊं, ज्ञान मिला था गीता के माध्यम से। कैसे? 8वीं कक्षा में मैंने श्रीमद् भगवद गीता का कंपटीशन में हिस्सा लिया था। उस साल 9वां अध्याय दिया गया था कंपटीशन के लिए। 9वें अध्याय में एक श्लोक आता है, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रताः भूतान यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याय जिनोपि माम। इस श्लोक का अर्थ है, जो जिसको पूजता है वो उसके पास जाता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास, पितरों को पूजने वाले पितरों के पास, भूतों को पूजने वाले भूतों के पास, और मुझे पूजने वाले मेरे पास आते हैं। ये श्लोक का अर्थ है। जब मैं वो पढ़ रही थी तो मेरे मन में प्रश्न आया, ये मुझे कहने वाला कौन है? देवताएं, भूत, पितृ, ये तो समझ में आया, मतलब ये जो मुझे कहने वाला है, या ना देवता है, ना पितृ है, ना भूत है, तो ये कौन है? मुझे जवाब किसी ने नहीं दिया। संस्कृत टीचर ने नहीं दिया, घर के पंडित जी ने नहीं दिया, जगत गुरु जी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। प्रश्न रह गया मेरे मन में। फिर 8वीं कक्षा की छुट्टी में मैं अपने ननियाल जा रही थी तो मुझे एक पर्चा मिला। उस पर्चे में लिखा हुआ था, गीता ज्ञानदाता भगवान से मिलना चाहते हो तो फलाने पते पर आ जाओ। बस वो पता पकड़कर मैं चली गई तो मुझे इतने पुस्तक मिले। एक भाई का दुकान ऑफिस था, उसने दिया। उसमें से साप्ताहिक पाठ्यक्रम पुस्तक पढ़ के, अव्यक्त मुरलियां पढ़ के मैं बाबा के बच्चे बन गए। फिर उसके बाद 10वीं कक्षा पूरी किया, उसके बाद सोचा मैंने अगर पढ़ाई करनी है तो बाबा के घर में रह के पढ़ूंगी, मुझे दुनियावी पढ़ाई मतलब नौकरी नहीं करनी है, छोड़ दिया। बाबा के घर आ गई मैं, ठीक है, छोटेपन में आ गई थी। तो मैं समझती हूँ 17 या 18 साल में ही इंचार्ज बन गई थी मैं सेंटर की। ज्यादा संस्था का इतना कुछ ज्ञान तो था नहीं, छोटे थे तब तो इतना मोबाइल वगैरह कुछ था ही नहीं। मैं एक आंध्र प्रदेश के सेंटर में थी जहां पर थोड़ा सा डिसर्विस हो गया था। वहां एक महीने में 50 रुपया सेवा करते थे सभी भाई बहने मिलके। कितनी सेवा थी भंडारी, कितनी थी? ओनली 50 रुपीज। उसमें से दो बहनों को चलना था, लेकिन चलाता था बाबा, भूखा नहीं रखता था। लेकिन उस समय क्या हुआ, एक पत्र आया मधुबन से। यशुदादी उन दिनों पोस्ट कार्ड भेजती थी, मधुबन में टीचर्स भर्ती है, आप सभी को आना है फलाने डेट। उन दिनों कर्नाटक से मधुबन आने के लिए ना हम लोगों को 90 रुपए टिकट लगता था आने जाने का, दोनों तरफ का टिकट 90 रुपए लगता था। लेकिन मेरे पास उतना भी पैसा नहीं था, क्योंकि महीने का 50 रुपया, इस महीने का, पिछले महीने का बचाया हुआ 20 रुपया, 70 रुपये थे मेरे पास। और मुझे मधुबन का किराया मतलब टिकट चाहिए 90 रुपए, फिर भंडारे में भी तो थोड़ा सेवा करना है, उसके लिए भी चाहिए। तो मैंने बड़ी दादी को पत्र लिख दिया, मुझे पता नहीं था कि ऐसे लिखना नहीं चाहिए। मैंने बड़े दादी को पत्र लिख दिया, जैसे मधुबन से कार्ड आया मैंने भी पोस्ट कार्ड लिख दिया दादी को। ये लिख दिया, दादी मेरे पास 70 रुपए है, मुझे मधुबन आने जाने के लिए 150 रुपया चाहिए, उतना पैसा नहीं है, इसीलिए इस बार मैं मधुबन नहीं आऊंगी। अपनी ओर से क्लियर लिख दिया, चुप हो गई मैं, शांत। फिर 15 दिन बीत गए। 15 दिन के बाद मधुबन से मेरे नाम का एक मनी ऑर्डर आया। क्या आया? 150 रुपए का, दादी ने भेजा था, भिजवाया था यशु दादी के साइन से। मनी ऑर्डर के नीचे लिखने का जगह होता है ना, वहां लिखा था मुट्ठी, पैसे मिलते ही टिकट बना के आ जाना। वो दादी के आए हुए पैसे मेरे लिए एक प्रॉमिस नोट बन गए. क्या बन गए? प्रॉमिस नोट. आजकल जो एक फोटो चित्र मिलता है ना, चिंता मत करो मैं बैठा हूं, वो दादियों ने कहा नहीं लेकिन करके दिखाया. क्या दिखाया? करके दिखाया. उसके बाद मैं इतनी निश्चिंत हो गई कि मतलब हम जो भी करेंगे हमारे पीछे हमारे बड़े खड़े हैं. वो केवल पैसा नहीं था, वो एक मेरा भरोसा था, एक मेरे लिए तसल्ली थी. मेरे लिए मानो भगवान ने इतना एक वरदान दे दिया, आज के बाद तेरे को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी करना है करो, कौन खड़ा है तेरे पीछे? हजारों भुजाओं वाला बाप खड़ा है, यज्ञ खड़ा है. ऐसी बहुत सारी मीठी मीठी यादें हैं दादियों से जुड़ी हुई, इस आंगन से जुड़ी हुई, जो यादें हमें बिल्कुल बदल दिया, जो हम थे उससे क्या से क्या बना दिया बाबा ने. इसलिए हम भी बाबा की आशाओं को पूर्ण करने के लिए सभी तैयार हैं. बाबा की क्या आशा है? समय की पुकार क्या है कि तपस्वी बनो. क्या पुकार है बाबा की? तपस्वी बनो. अब शब्दों से सेवा ज्यादा नहीं होगी, शब्द भी तब सेवा करेंगे जब तुम्हारी स्थिति ठीक होगी. अगर स्थिति ठीक नहीं है तो शब्द भी सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में हमसे भी अच्छे बोलने वाले स्पीकर्स बहुत निकल गए हैं. क्योंकि आजकल AI भी निकल गया है, तो आजकल AI ब्रह्मा कुमारी सच्ची ब्रह्मा कुमारी से अच्छा बोलती है, ठीक है ना. इसलिए हमको चाहिए, आजकल क्या चाहिए, कोई भी भाई बहन, आप कोर्स कराते हो, आप प्रदर्शनी समझाते हो, आप किसी को ज्ञान देते हो, तो ज्ञान की सेवा तब होगी जब हमारी स्थिति अच्छी होगी. तो स्थिति कैसे बनेगी? तपस्या से. और तपस्या फलीभूत कब होगी? जो तपस्या से हम शक्तियां प्राप्त करते हैं उसको जब हम प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट करते हैं, अर्थात प्रैक्टिकल में उपयोग में लाते हैं, तभी वो शक्तियां काम आती है. इसलिए हमें केवल तपस्या करना नहीं है, तपस्वी बनना है. केवल योग करना नहीं है लेकिन योगी बनना है. योगी, बाबा ने कहा, एक घंटे का योगी नहीं होता है, योगी जीवन होता है, ठीक है ना. इसलिए आप सब तपस्वियों का दर्शन करके बहुत अच्छा लगा. शिरु दीदी ने जब मुझे पूछा आने के लिए, तो मैंने दीदी को कहा, दीदी एक दिन पांडव भवन में रहने को मिलता है तो मैं किसी भी बहाने आने के लिए तैयार हूं. इसलिए दोनों काम हो गए मेरे. कहते ना, स्वार्थ भी हो गया, परमार्थ भी हो गया. आप सब से मिलना भी हुआ, कुछ बातें शेयर करना भी हुआ, साथ में एक दिन पांडव भवन में पुरानी यादों को ताजा करने का मौका भी मिला. बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. हर कर्म से पहले
ओम शांति। आदरणीय वीना दीदी जी का हम एक हाथ की ताली बजा करके धन्यवाद व्यक्त करेंगे। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमको शांति की शक्ति क्या है वो डीपली आपने हमें महसूस कराया, और साथ ही साथ दीदी ने जो अनुभव हमें